आप अपना खुद का सेल्फ होस्टेड पासवर्ड मैनेजर सेट कर सकते हैं जो निजी और सुरक्षित दोनों है। और मैं आपको अगले कुछ मिनटों में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, भले ही आपने पहले कभी सर्वर को छुआ ना हो। हम कमोटेरो पर एक उबंटू वर्चुअल प्राइवेट सर्वर सेट करेंगे सिर्फ $4 प्रति माह, या अगर आप मेरे $100 क्रेडिट का उपयोग करते हैं तो ये बिल्कुल मुफ्त है। फिर हम डॉकर को इंस्टॉल और कॉन्फिगर करेंगे। HTTPS के साथ एनक्रिप्टेड रिवर्स प्रॉक्सी के लिए कैडी का उपयोग करें और वॉल्ट वार्डन को इंस्टॉल करें, जो एक हल्का ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर है जिस पर हजारों लोग भरोसा करते हैं, ताकि आप थर्ड पार्टी सेवाओं पर निर्भर हुए बिना कहीं से भी अपने सभी पासवर्ड सुरक्षित रूप से प्रबंधित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं वॉल्ट वार्डन को होस्ट करने के लिए VPS का उपयोग करूंगा, इसलिए मेरे पासवर्ड हमेशा ऑनलाइन एक्सेस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर सेल्फ होस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी भी कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आगे बढ़ें और अपने मुफ्त $100 VPS क्रेडिट लें और अपने कटेरा डैशबोर्ड पर मुझसे मिलें। हम माई क्लाउड सेक्शन में जाकर एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे और फिर जोन के लिए अपने सबसे नजदीकी लोकेशन को चुनें। यह वो फिजिकल डेटा सेंटर होगा जहां आपका VPS सर्वर मौजूद है। मैं अटलांटा चुनने जा रहा हूं। और फिर इमेज के लिए उबंटू चुनें और आपको लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन चाहिए जो कि 24.04 है। और फिर सर्वर स्पेक्स के लिए हम टाइप के लिए चुनेंगे। और मूल रूप से वॉल्ट वार्डन बहुत हल्का है, हमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ न्यूनतम के साथ काम करेंगे। एक CPU कोर, 1 GB रैम और 20 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज, और यह सिर्फ $4 प्रति माह है। हम यहाँ नीचे आएंगे और हमें अपने VPS के लिए प्रति माह डेटा ट्रांसफर के 5 टैब मिलेंगे। फिर आगे बढ़ें और अपने सर्वर के लिए एक पासवर्ड बनाएं, और फिर आप अपने सर्वर को एक नाम दे सकते हैं। मैं अपने सर्वर को पासवर्ड वॉल्ट के लिए PW कहूंगा। ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। तो ये सिर्फ $4 प्रति महीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वर बनाने पर क्लिक करते हैं, और जब यह 1 मिनट में खत्म हो जाता है तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। ठीक है, हमारा सर्वर चालू है और चल रहा है और इसे यह IP पता सौंपा गया है। तो मैं आगे बढ़कर इसे अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने जा रहा हूं। मूल रूप से यदि आप बस खेल रहे हैं तो आप तकनीकी रूप से इसका उपयोग अपने पासवर्ड मैनेजर को होस्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यदि उत्पादन सर्वर के लिए, मैं इसे एक डोमेन नाम से संबद्ध करने की सलाह देता हूं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। और मूल रूप से इसमें वह शामिल है जहां से आपने अपना डोमेन नाम खरीदा है। मैंने अपना डोमेन नाम लूलांटे यहां NetIM से खरीदा है। तो अपने डोमेन नाम रजिस्टर में जाएं, अवधारणाएं बहुत समान होने जा रही हैं, और अपनी DNS सेटिंग्स खोजें, या इसे जोन फाइल कहा जा सकता है, और उस IP पते को डोमेन नाम से मैप करने के लिए हम एक नया रिकॉर्ड जोड़ने जा रहे हैं। तो एक नया रिकॉर्ड बनाएं पर क्लिक करें। प्रकार होने जा रहा है और लक्ष्य आपके VPS सर्वर का IP पता होगा, और आप इसे सीधे अपने डोमेन नाम पर होस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे सबडोमेन पर होस्ट करना एक अच्छा विचार हो सकता है। तो मैं इसे vault.lan.org पर रखने जा रहा हूं, और फिर हम इसकी पुष्टि करेंगे, और फिर आप यहां नीचे देख सकते हैं कि रिकॉर्ड बन गया है, और हम इस IP पते को उस डोमेन नाम से मैप कर रहे हैं। उस प्रसार, उस एसोसिएशन के होने में कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। लेकिन अगर नहीं तो अगर आप मैक या लिनक्स पर हैं तो एक टर्मिनल विंडो खोलें, और अगर आप विंडोज पर हैं तो आप एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, और हम SSH कमांड के साथ उस रिमोट सर्वर में लॉग इन करने जा रहे हैं। तो आप अपने डोमेन नाम या अपने IP पते पर SSH रूट टाइप करने जा रहे हैं, मेरे मामले में vault.lan.org, और फिर एंटर दबाएं। और अगर आपको होस्ट की प्रामाणिकता के बारे में ये संदेश नहीं मिलता है तो शायद DNS प्रसार अभी तक नहीं हुआ है। तो बस इसे कुछ और मिनट दें, और नहीं तो क्या आप वाकई कनेक्ट करना जारी रखना चाहते हैं? हाँ, टाइप करें, एंटर दबाएं, और फिर वो पासवर्ड जो हमने अभी 1 मिनट पहले बनाया था। आगे बढ़ें और उसे टाइप करें या पेस्ट करें, और हो गया, हम डेटा सेंटर में उस रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस बिंदु पर, जैसा कि हमेशा अच्छा अभ्यास होता है, हम अपने सिस्टम पर नवीनतम और बेहतरीन पैकेज प्राप्त करने के लिए ऐप्ट अपडेट करना चाहते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं 87 पैकेज हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और ऐप्ट अपग्रेड के साथ उसका पालन करते हैं। एंटर दबाएं। ये 306 MB अतिरिक्त डिस्क स्थान होने जा रहा है, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? आप कैपिटल Y कर सकते हैं। एंटर दबाएं और हम इसे अपना काम करने देते हैं। ठीक है, ये समाप्त हो गया। और अगली चीज जो आप करना चाहते हैं वो है रूट उपयोगकर्ता का उपयोग करने के बजाय, आइए एक नया उपयोगकर्ता बनाएं जिसे हम छद्म विशेषाधिकार दे सकें। बस इसलिए कि हमारे पास वो सुरक्षा भेद्यता ना हो। तो ऐसा करने के लिए हम यूजर जोड़ सकते हैं, और फिर उस यूजर का नाम जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। मैं अपने यूजर को टोनी कहूंगा, और फिर उस यूजर के लिए एक पासवर्ड चुनूंगा और उसे कन्फर्म करूंगा, और फिर आप उसका नाम या अपने यूजर का नाम दे सकते हैं। और फिर ये सब पुराना हो चुका है तो आप डिफॉल्ट कैपिटल Y को स्वीकार कर सकते हैं। एंटर दबाएं। ठीक है, तो हमारे पास टोनी नाम का एक नया यूजर है। आइए उस यूजर को छद्म विशेषाधिकार देते हैं, और हम यूजर मोड A Capital G छद्म टोनी के साथ ऐसा कर सकते हैं, और एंटर दबाएं। अब उस यूजर के पास पैकेज और अन्य चीजें इंस्टॉल करने के लिए छद्म विशेषाधिकार हैं, और हम सूटोनी के साथ उस यूजर पर स्विच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम रूट के बजाय टोनी हैं। आगे आइए डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल करें, क्योंकि हम उनका उपयोग वॉल्ट वार्डन को कॉन्फ़िगर करने के लिए करने जा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हम ये कर सकते हैं, मेरे पास नीचे ये कमांड होंगे। हम get.docker.com से docker.sh स्क्रिप्ट को कल करने जा रहे हैं, और फिर उसे निष्पादित करने के लिए हम छद्म मैसेज कर सकते हैं, और फिर वो स्क्रिप्ट जो अभी हमारी निर्देशिका में है। एंटर दबाएं, अपना पासवर्ड टाइप करें, और यह आगे बढ़ने वाला है और चलने में बस एक मिनट लगेगा। और जब ये समाप्त हो जाए तो हम टोनी उपयोगकर्ता को डॉकर समूह में जोड़ना चाहते हैं, और हम इसे कुछ इसी तरह से कर सकते हैं जैसा हमने अभी किया था। छद्म उपयोगकर्ता मोड़ कैपिटल जी डॉकर छद्म के बजाय, और फिर उपयोगकर्ता का नाम टोनी। एंटर दबाएं, और उन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए आइए बस अपने टोनी शेल सत्र से बाहर निकलें, और फिर हम सूटोनी के साथ वापस आ सकते हैं। ठीक है, आगे डॉकर कंपोज इंस्टॉल करते हैं। हम इसे sudo apt install docker mpose के साथ कर सकते हैं, और हम -y कर सकते हैं ताकि हमें संकेत न दिया जाए। एंटर दबाएं। ठीक है, अब हमारे पास डॉकर और डॉकर कंपोज है। आइए एक निर्देशिका बनाते हैं जहां वॉल्ट वार्डन मौजूद होगा। तो हम mkdir वॉल्ट वार्डन कर सकते हैं, और फिर cd वॉल्ट वार्डन के साथ उस डायरेक्टरी में चलते हैं, और जाहिर सी बात है कि यहां कुछ भी नहीं है। चलिए अपनी पहली फाइल बनाते हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। मैं नैनो का उपयोग करूंगा, और फाइल डॉकर mpose यामेल होगी। ये हमारी डॉकर कंपोज फाइल है। एंटर दबाएं, और मैं इसे यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर से मैं विवरण में नीचे ये स्निपेट रखूंगा। मूल रूप से डॉकर कंपोज फाइल का संस्करण 3 है, और सेवाओं के अंतर्गत हम वॉल्ट वार्डन के अंतर्गत नेस्ट करने जा रहे हैं। मूल रूप से हम डॉकर सर्वर से वॉल्ट वार्डन की नवीनतम छवि खींच रहे हैं। हम इसे वॉल्ट वार्डन कहेंगे, और जब तक इसे मैन्युअल रूप से बंद नहीं किया जाता है, हम इसे पुनः आरंभ करने जा रहे हैं। हम इसे वास्तव में केवल एक वॉल्यूम, हमारे डेटा वॉल्यूम को असाइन कर रहे हैं, और फिर वो चीज जिसे आप अपने लिए बदलना चाहेंगे वह है डोमेन नाम। तो मेरा vault.lantern.org पर होगा। आप अपना डोमेन या अपना आईपी एड्रेस कर सकते हैं। शुरुआत में हम साइनअप की अनुमति देंगे, तो साइनअप की अनुमति सही है, लेकिन हम वापस आकर इसे थोड़ी देर बाद गलत में बदल देंगे। अंत में हम अपने पोर्ट 8080 को सिर्फ 80 पर मैप कर रहे हैं, और अगर यह सही लगता है तो आगे बढ़ें और कंट्रोल एक्स कैपिटल वाई करें। फाइल को सेव करने के लिए एंटर दबाएं, और आगे हम इस डायरेक्टरी में एक कैडी फाइल बनाने जा रहे हैं। अगर आप परिचित नहीं हैं, तो कैडी एक वेब सर्वर है, और यह आपके लिए अपने आप एक SSL प्रमाण पत्र का प्रावधान करता है जो HTTPS एनक्रिप्टेड कनेक्शन को सक्षम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं, हम उसी तरह का काम करेंगे। नैनो कैडी कैपिटल कैडी फाइल, एंटर दबाएं, और फिर मैं इस स्निपेट को यहाँ पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पहली पंक्ति के लिए vault.lan.org, इसे अपने डोमेन नाम से बदलें। और फिर आपने देखा कि हम डॉकर कंपोज फाइल में पोर्ट 8080 को पोर्ट 80 पर मैप कर रहे थे। ये हमारे लोकल होस्ट से आता है जो हमारे लोकल सर्वर का होस्ट नाम है, और हम gzip कंप्रेशन को इनेबल करेंगे। तो कंट्रोल एक्स कैपिटल वाई एंटर दबाकर इसे सेव करें, और अब हमें अपने डॉकर कंपोज फाइल में वापस जाना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कैडी एप्लीकेशन को भी पुल डाउन करें। तो हम अभी भी सेवाओं के तहत इसके निचले भाग पर आ सकते हैं, और मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। तो कैडी सेक्शन के तहत हम कैडी का नवीनतम संस्करण पुल करने जा रहे हैं। हम इसे कैडी कहेंगे, इसी तरह की चीज। इसे तब तक रिस्टार्ट करें जब तक कि यह बंद ना हो जाए। पोर्ट 80 को 80, 443 को 443 पर मैप करने जा रहे हैं, जो अगर आप परिचित नहीं हैं, तो वे HTTP और HTTPS पोर्ट हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नीचे कुछ वॉल्यूम स्टफ है जहां हमारे पास वह कैडी फाइल है जिसे हमने बनाया था। हम उसे डॉकर कंटेनर और यहां कुछ अन्य वॉल्यूम में मैप करने जा रहे हैं। तो अगर यह सही लगता है तो आगे बढ़ें और CRL X कैपिटल Y करें। सेव करने के लिए एंटर दबाएं। अब आइए अपनी डॉकर कंपोज फाइल चलाएं। तो मूल रूप से उस डायरेक्टरी में आप डॉकर mpose अब -d कर सकते हैं, और यहां -d डेमन मोड है, तो ये बैकग्राउंड में चलेगा। आगे बढ़ें और एंटर दबाएं, और यह उन सभी पैकेजों को खींचेगा और हमारे द्वारा निर्दिष्ट सभी चीजों को कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक है, अब जब तक आपको यहाँ कोई त्रुटि नहीं मिलती, तब तक हमारा वॉल्ट वार्डन चल रहा है और हमारा कैडी चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे छोटा करते हैं, और इस बिंदु पर ब्राउज़र विंडो में आप एक नया टैब खोल सकते हैं और अपने डोमेन नाम या आईपी पते पर जा सकते हैं। तो मैं vault.lan.org पर जा रहा हूं। एंटर दबाएं, और वास्तव में ये काम नहीं करता है। हमें 502 खराब गेटवे एरर मिलता है। और मैं इसे एडिट नहीं करने जा रहा हूँ। इससे हमें डॉकर और कैडी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए अपने सर्वर पर वापस चलते हैं और मूल रूप से अपने कैडी या माफ करें अपने डॉकर कंपोज फाइल पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इन पोर्ट के साथ एक्सटर्नल पोर्ट को इंटरनल पोर्ट पर मैप कर रहे हैं और हमारे पास कंटेनर में पोर्ट 80 पर सुनने वाले कई पोर्ट हैं और ये तब तक ठीक है जब तक कि ये एक्सटर्नल पोर्ट अद्वितीय है। तो मूल रूप से हम कहाँ गलत हो गए हैं कि हम कंटेनर नाम का उपयोग कर सकते हैं जो होस्ट नाम की तरह काम करता है और हमें 80.8080 के इंटरनल पोर्ट पर सुनने की आवश्यकता है। तो मूल रूप से हमारे कैडी फाइल में लोकल होस्ट 880 के बजाय हम चाहते हैं कि वह वॉल्ट वार्डन और पोर्ट 80 हो। तो हम इसे सेव करेंगे और हम डॉकर एमपीओएसई रीस्टार्ट कैडी के साथ डॉकर कंपोज फाइल को रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंटर दबाएं। ठीक है, हो गया। अब इसे छोटा करते हैं और अपने वेब ब्राउजर पर वापस जाते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं और इस बार हम लॉगिन पेज देखते हैं। अब क्योंकि हमारे डॉकर कंपोज फाइल में हमने कहा था कि साइनअप को अनुमति दें यानी ट्रू के बराबर, हमारे पास यहाँ नीचे एक बटन है जिस पर लिखा है अकाउंट बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं। मैं एक अकाउंट बनाने जा रहा हूं और जारी रखें पर क्लिक करूंगा और अब आपको एक मास्टर पासवर्ड चुनना होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके सभी पासवर्ड का पासवर्ड है। तो सुनिश्चित करें कि यह लंबा हो, यह अद्वितीय हो, यह यादृच्छिक हो, इसमें सभी अच्छी चीजें हों, सभी अच्छी पासवर्ड तकनीकें हों जो आपको वर्षों से सिखाई गई हैं। तो आगे बढ़ें और इसे टाइप करें और फिर इसकी पुष्टि करें। और अगर आप कोई संकेत देना चाहते हैं तो आप संकेत दे सकते हैं, अन्यथा आप अपना खाता बना सकते हैं। और यहाँ वॉल्ट वार्डन डैशबोर्ड है। अब यहाँ कुछ भी करने से पहले, जब तक आप एक से ज्यादा अकाउंट नहीं बनाना चाहते, जैसे कि एक से ज्यादा यूजर को अपने वॉल्ट वार्डन सर्वर तक पहुंचने की अनुमति देना, नए साइनअप की सुविधा को डिसेबल करना एक अच्छा सुरक्षा उपाय है। तो चलिए अपने टर्मिनल विंडो पर वापस जाते हैं, अपनी डॉकर कंपोज फाइल खोलते हैं और हम बस साइनअप्स अलाउड को फॉल्स में बदलना चाहते हैं। और इस बार हम डॉकर कंपोज डाउन करेंगे ताकि पूरा डॉकर कंपोज डाउन सब कुछ बंद कर दे और फिर डॉकर कंपोज अप। और असल में अगर हम बिना किसी अन्य तर्क के डॉकर कंपोज अप करते हैं तो ये हमारे टर्मिनल एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। तो चलिए सीआरएलसी करते हैं और उसकी जगह हम डॉकर कंपोज अप एश डी फॉर डेमन करेंगे ताकि यह बैकग्राउंड में चलता रहे। और अब इस तरह से आपके सर्वर पर कोई और साइन अप नहीं हो सकेगा। अब पासवर्ड मैनेजर की प्रकृति के कारण हम सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ना चाहते हैं। हम इसे एक साधारण फायरवॉल से कर सकते हैं जिसके लिए हम इस मामले में UFW का उपयोग करने जा रहे हैं और यह पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आप UFW कर सकते हैं। दरअसल हमें छद्म UFW अनुमति SSH करने की आवश्यकता होगी और यह हमें SSH के माध्यम से हमारे रिमोट सर्वर में लॉग इन करने की अनुमति देगा। अपना पासवर्ड टाइप करें। वो नियम अपडेट हो गया है, मैं वो करने जा रहा हूँ। छद्म UFW HTTP की अनुमति देता है और फिर हम HTTPS के लिए भी यही काम करेंगे। अंत में हम फायरवॉल को सक्षम करने के लिए छद्म UFW सक्षम करेंगे और यह ठीक है, हम जारी रख सकते हैं क्योंकि हमने अपने खुले SSH को अनुमति दी है। ये हमारे कनेक्शन को बाधित नहीं करेगा। क्यों? एंटर दबाएं। और अब अगर हम छद्म UFW स्थिति वर्बोज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे फायरवॉल नियम सक्रिय हैं और केवल इन पोर्ट पर ट्रैफिक की अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु पर वॉल्ट वार्डन का एक त्वरित डेमो करते हैं। तो हमें इस रिमोट सर्वर तक पहुंचने के लिए एक क्लाइंट की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहां अपने ब्राउजर पर बिट वार्डन एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहा हूं। तो बिट वार्डन और वॉल्ट वार्डन के बीच संबंध मूल रूप से है, वॉल्ट वार्डन बिट वार्डन का एक ओपन सोर्स विकल्प है। बिट वार्डन के यहाँ पेड प्लान है, ओह, लेकिन हम इसे सेल्फ होस्ट कर रहे हैं इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे पूरी तरह से संगत हैं। ओह, तो मूल रूप से मैं गूगल क्रोम चला रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे अपने ब्राउजर के साथ एकीकृत करने के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। हम आगे बढ़कर इसे क्रोम में जोड़ेंगे और फिर जैसा कि यहां कहा गया है, हम इसे अपने ब्राउजर पर पिन कर सकते हैं। तो हम यहां इस पिन पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह हम अपने पासवर्ड को किसी भी पेज पर देख सकते हैं जिस पर हम हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और बिटविन में लॉग इन करें। तो वही क्रेडेंशियल जो हमने अभी अपने सर्वर पर बनाए हैं, हम उन्हें टाइप कर सकते हैं। जारी रखें। अब वो मास्टर पासवर्ड हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसे टाइप या पेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ नीचे लिखा है कि हम bitwarden.com एक्सेस कर रहे हैं। ओह, ये वास्तव में सच नहीं है, हम एक सेल्फ होस्टेड विकल्प चाहते हैं। और सर्वर URL जो कि जैसा कि आप इस बिंदु तक समझ गए होंगे https://vault.lan.org और उसे सेव कर लें। और अब हम अपने मास्टर पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। बढ़िया, हम लॉग इन हैं और यह कहता है कि हमारा वॉल्ट खाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कोई पासवर्ड नहीं जोड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे करते हैं, देखते हैं। चलिए reddit.com पर जाते हैं और Reddit पर एक अकाउंट बनाते हैं। तो हम लॉग इन करेंगे और साइन अप करेंगे। तो मैं यहां एक अकाउंट बनाऊंगा। जारी रखें, मैं उस सत्यापन कोड को पेस्ट करूंगा। जारी रखें पर क्लिक करें और फिर मुझे उस यूजर नेम से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल्ट वार्डन ब्राउजर एक्सटेंशन पहले से ही हमारी मदद कर रहा है उन आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाले पासवर्ड का उपयोग करने के बजाय जिन्हें आपने अभी याद किया है। हम इस तरह का एक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसे स्वीकार करूंगा और जारी रखें पर क्लिक करूंगा। और फिर यहां ऊपर आप देख सकते हैं क्या बिटवार्डन को आपके लिए ये पासवर्ड याद रखना चाहिए। हम इसे याद रखना चाहते हैं, हम इसे भी फोल्डरों में व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बस आगे बढ़ूंगा और इसे सहेज लूंगा और हमारा पासवर्ड सेव हो गया है। हमारा अकाउंट इस पॉइंट पर क्रिएट हो गया है। मैं आगे जाकर इस स्टफ को स्किप करने जा रहा हूं। हम यहां अपने वॉल्ट वार्डन डैशबोर्ड पर वापस जा रहे हैं। हम उस पेज को रिफ्रेश करेंगे और फिर से लॉग इन करेंगे। हम अनलॉक पर क्लिक करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि यहां हमारा पहला पासवर्ड है reddit.com के लिए। यहां ईमेल है। अगर हम यहां लिंक पर क्लिक करते हैं तो यह वास्तव में लॉगिन जानकारी, हमारा यूजर नेम, हमारा पासवर्ड खोलेगा। अगर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं या हम इसे सीधे ऐसे ही देख सकते हैं। इसके अलावा यहां टूल्स के तहत डेटा इंपोर्ट करें। अगर आपके पास कोई मौजूदा पासवर्ड मैनेजर है जिसे आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वे कई फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, JSON, CSV और क्या नहीं। और फिर बस उसे यहां अपलोड करें ताकि आपके सभी पासवर्ड यहां हों। और फिर से पासवर्ड और सुरक्षा के महत्व की प्रकृति के कारण मैं सेटिंग्स और सुरक्षा में आने और दो चरणीय प्रमाणीकरण को सक्षम करने की भी सलाह देता हूं, या तो प्रमाणक ऐप या भौतिक हार्डवेयर कुंजी के माध्यम से। और उतना ही महत्वपूर्ण, आपको अपने सर्वर को लॉक करने के लिए एक और कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि SSH कुंजी कैसे सेट करें और रूट और पासवर्ड लॉगिन दोनों को कैसे अक्षम करें, जो आपके पासवर्ड वॉल्ट की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ट्यूटोरियल में लगभग 2 मिनट और 35 सेकंड में आऊंगा, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं और हम सीधे हार्डनिंग चरणों पर जाएंगे। मैं आपसे वहां मिलता हूं।